ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 17वां अध्याय, इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, श्लोक क्रमांक 24। तस्मात् ओम इति उदात्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य, ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हरेक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु जो मूल सिद्धांत है उसे दर्शाया है, और वो है श्रद्धा। और भगवत तत्व में श्रद्धा होना ये भगवत कृपा से ही हो सकता है। ये नहीं हमें समझना चाहिए कि हम हमारी क्षमता से उस श्रद्धा को अर्जित कर पाएंगे। भगवान में श्रद्धा भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती है। और यहां पर आज का जो श्लोक हमने लिया, इसमें भगवान श्री कृष्ण वैदिक पद्धति क्या है उस श्रद्धा को अर्जित करने के लिए, या फिर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम एक पद्धति का पालन करने हमें, तो वो वैदिक पद्धति क्या है, वैदिक संस्कृति। हम अक्सर वैदिक संस्कृति के विषय में चर्चा करते हैं, या वैदिक जीवन शैली, वैदिक लाइफस्टाइल। तो इस श्लोक में तीन शब्दों में भगवान बता रहे हैं कि ये जो तीन क्रियाएं हैं, इन तीन क्रियाओं के द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता है कि कौन वैदिक जीवन शैली का पालन कर रहा है, और जो इसका पालन नहीं कर रहा तो इसके विपरीत क्या है जिसका वो इस भौतिक संसार में पालन करता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तप। अब हम जो इस्कॉन में साधना कर रहे हैं, या पूरे शास्त्रों में जो भी कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं बताई गई हैं हमारे उन्नति के लिए, उन सब का निचोड़ यदि कोई पूछे तो क्या है, ये तीन, यज्ञ, दान और तप। इन तीन के बाहर कुछ नहीं है, और यदि कोई प्रामाणिकता से इन तीन क्रियाओं का पालन कर रहा है, यज्ञ, दान और तप, तो निश्चित रूप से जो परम धाम है भगवान का, और जैसे भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भगवान में श्रद्धा वो अवश्य ही उसे प्राप्त होगी। तो आज हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे, यज्ञ, दान और तप। और यज्ञ, दान और तप का विपरीत इस भौतिक संसार में जो भौतिक जीवन शैली है, ये यज्ञ दान और तप तो आध्यात्मिक जीवन शैली है, वैदिक जीवन शैली है। और इसके विपरीत है भौतिक जीवन शैली, जिसे हम कहेंगे पाप, स्वार्थ और भोग। तो यज्ञ, दान और तप का विपरीत हुआ पाप, स्वार्थ और भोग। तो हम यदि पूछे कि इस्कॉन में हम जो साधना करते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, तो ये यज्ञ, दान और तप, इस वैदिक प्रणाली का हम पालन कैसे कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने हमें यज्ञ, दान, तप किस प्रकार से दिया है इस्कॉन? हाँ, संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ हम किस प्रकार से पालन करते हैं, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो क्या है? हमारा यज्ञ। इस कलयुग में यही एकमात्र यज्ञ है। तप क्या है? चार नियमों का पालन। चार नियमों का जो पालन हम करते हैं वो है तपस्या, और दान, प्रचार। तो प्रभुपाद ने, देखिए इस्कॉन में हमें जो भगवान इस श्लोक में आज कहे, यज्ञ, दान और तप, प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन में जप, चार नियम का पालन और प्रचार, इसके द्वारा ये हमें एक सुविधा प्रदान की। वैदिक जीवन शैली का पालन हम शहर में रहते हुए कैसे कर सकें, है कि नहीं? और इसका विपरीत भोग, पाप और स्वार्थ। तो यदि हम सर्वप्रथम तप को लें, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में किसी प्रकार की तपस्या का पालन नहीं करेंगे, तब तक यज्ञ और दान संभव नहीं। अब देखिए, अक्सर इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से भारत में, यज्ञ करना बहुत लोग चाहते हैं, और बहुत लोग अपने तरीके से यज्ञ भी कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया, यदि उसे ले तो कोई तीर्थयाटन कर रहा है, कोई ज्ञान मार्ग को अपनाए हुए है, कोई देवी देवताओं की पूजाओं में लगा हुआ है, कोई कुल देवताओं की पूजा में लगा हुआ है, आजकल तो क्रिकेट की पूजा चल रही है, उसका भी यज्ञ हो रहा है कि स्वाहा किया जा रहा है एक एक क्रिकेट प्लेयर के नाम से। और ये हम कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं, हो रहा है। तो अपने अपने ढंग से लोग यज्ञ का पालन कर रहे हैं, परंतु जब तक तप नहीं जीवन में, इसलिए प्रभुपाद ने केवल हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया कि हां भाई हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और जो मन में आए जीवन जियो। नहीं, वो होता ना बाय वन गेट वन फ्री डील होते ना ऐसे। तो हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए तो चार नियम, और चार नियम जो पालन कर रहा है, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के कोई काम का नहीं। तो ये है तप। अब जैसे श्रीमद् भागवत में महाराज ऋषभदेव, उनके जो उपदेश और उनके जो उपदेश उन्होंने अपने 100 पुत्रों को दिए, शुरुआत उन उपदेशों की उन्होंने कैसे की है, तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेति अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उन्होंने कहा नायाम देहो देह भाजा नृलोके, कि ये जो मनुष्य जीवन अब मिला है, अर्थात मिलते ही मनुष्य मिलते ही क्या करना है वो बता रहे हैं यज्ञ से पहले, इसलिए हमने तप पहले लिया है। ये तीनों की श्रृंखला में हमने तप पहले क्यों लिया है, क्योंकि महाराज ऋषभदेव ने क्या कहा, जैसे ही ये मनुष्य देह अब मिला है तप में लगो, क्या करो क्या नहीं करो। उन्होंने कहा सबसे पहले लगते ही मनुष्य जीवन मिलते ही ये सूअरों की तरह कष्ट मत करो। किन की तरह? सूअरों की तरह बोल रहे हैं। अब देखिए हिंदी में थोड़ा ये भाषा कठोर हो जाती है, लेकिन संस्कृत में वो जो ये ऐसे प्राणी जो हैं इनके नाम भी बहुत सुसंस्कृत तरीके से बताए गए हैं। तो जैसे कि श्वान कुत्ते का एक नाम है, योग में है ना श्वानासन उस प्रकार से, लेकिन हिंदी में बोले कुत्ता बहुत चुभ जाता है बात। योग में है श्वान आसन तो उसको हिंदी में बोले कुत्ते का आसन तो अजीब लगेगा। मान लो रामदेव बाबा टीवी पे बोल रहे हैं चलो अभी कुत्ते का आसन करो, तो ऐसे यहां पर महाराज ऋषभदेव बोल रहे हैं न अयम देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अरहते विड़भुजाम। उन्होंने सुअर को किस प्रकार से परिभाषित किया है, विड़भुजाम, कि जो मल मूत्र खाने वाला। अब देखिए उन्होंने बहुत ही सिविलाइज तरीके से बोल दिया और उसमें बहुत से कैटेगरीज इंक्लूड कर दिए उन्होंने, कि जो उस प्रकार का खाते हैं, मतलब अवांछित चीजें जो खाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ गए, उसी कैटेगरी में आ गए। और क्योंकि ऋषभदेव ने पिछले युगों में कहा था तो वो बोल रहे थे कि पिछले युगों में जो सुअर हुआ करते थे उन्हें बहुत कष्ट करना पड़ता था वो खरने के लिए खाने के लिए, लेकिन कलयुग में जो जानवर हैं वो मनुष्यों से कम कष्ट कर रहे हैं भोग करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि पहले हाँ लोग कहा करते थे कि अरे इतने गधे की तरह क्यों कष्ट कर रहे हो, बोलते थे ना व्हाई आर यू स्लॉगिंग हार्ड लाइक एन एस। तो आजकल यदि मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य को देखकर सारे गधे बोलते होंगे अरे मनुष्य की तरह क्यों काम कर रहा है तू। सो इट्स एन इंसल्ट फॉर डोंकी टू बी कंपेयर्ड नाउ टू अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर वो कहते हैं तप दिव्य, ऐसा वैसा तप नहीं, दिव्य तप। तो दिव्य तप का परिणाम क्या है, शुद्धेत, वो तप जो हमें शुद्ध बनाए वो है दिव्य तप। अब देखिए इस भौतिक संसार में मुंबई शहर में जाइए आप, शारीरिक रूप से बहुत तपस्या है वहां रहना, लेकिन वो दिव्य तप क्यों नहीं है, क्योंकि वो तथाकथित तप का परिणाम क्या है, अशुद्धि। अभी वही भगवान छठे अध्याय में बता रहे हैं कि एक योगी कैसे तप करता है जंगल में जाकर, मुंबई की लोकल ट्रेन में देखो उसी प्रकार का तप चल रहा है, एक टांग पर खड़ा है हाथ ऊपर ताड़ासन में, प्राणायाम भी साथ साथ चल रहा है क्योंकि इतने लोग अंदर। लेकिन वो तप किस लिए किया जा रहा है? इंद्रिय भोग के लिए, इसलिए वो दिव्य तप नहीं है। तो जब ऋषभदेव कह रहे हैं कि दिव्य तप जो कि शुद्धेत और ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, कि जो ब्रह्म सुख प्रदान करे, और वो कौन सा है ब्रह्म सुख? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, वो है दिव्य तप। तो कलयुग में श्रील प्रभुपाद ने अपने एक प्रवचन में कहा, द ऑस्टेरिटी, बहुत सुंदर उन्होंने कहा, द ऑस्टेरिटी तपस्या इन कलयुग इज सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी। प्रभुपाद ने कहा सादा जीवन जीना यह सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग के जीवों के लिए। और कलयुग के जीवों के लिए, मतलब इसका विपरीत लॉजिक क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी लग्जरी। इसलिए अक्सर जब लोग किसी हरे कृष्णा प्रचारक को देखते हैं, मिलते हैं, तो पूछते हैं कि तुम कुछ भी नहीं करते, कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं खाते, इतना इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? जैसे ये अमेरिका में एक घटना हुई थी हमारे हरे कृष्णा भक्तों के साथ। तो ये लोग जो नगर संकीर्तन किया करते थे, तो एक जगह पर वो जहां नगर संकीर्तन रोज निकाला करते थे मृदंग करताल के साथ, भक्त सुबह सुबह जीव जागो करके, वो तो कंप्लेन पुलिस डिपार्टमेंट को की गई और अब इनके ऊपर केस हो गया। देखिए नगर संकीर्तन कर रहे हैं, इसके ऊपर कोर्ट केस, ये कलयुग की विशेषता है। तो कोर्ट केस हुआ तो वो भक्त को बुलाया गया, जो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया। तो जज अब सब सुन रहा है, जो भी डिफेंस प्रोसिक्यूटर जो भी चल रहा था, तो इनके ऊपर सब आरोप लगाए गए कि ऐसे ऐसे ये लोग है ना शांति भंग कर रहे हैं हमारी। एक बार बंबई में भी ऐसे ही हुआ था, हम लोग चौपाटी में कीर्तन करने गए थे, तो वहां के जो वो इंचार्ज थे, वो चौपाटी जिन्होंने उनका पुनरुत्थान किया था, बहुत बड़े नेता, वो वहां पर आए, उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है, इतना सब शोर शराबा। तो उस समय मैं ही वहां पर खड़ा था, तो मुझे बुलाया, इधर आओ, बहुत बड़े नेता हो, सब सिक्योरिटी विक्योरिटी गन वन के साथ, बोले ये क्या चल रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मराठी में बोलने लगे, मला इथे स्मशान शांति पाइजे। तो देखो कलयुग में शांति की परिभाषा भी देखो क्या देते हैं। तो मैं मन में यही बोल रहा था कि वैसे ही सब मरे हुए मुर्दे हैं यहां पे। उनको जीवित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लेकर आए, जीव जागो। तो स्मशान शांति, देखो क्या डेफिनेशन देखो शांति का आजकल। तो जब ये हरे कृष्ण भक्त को ये जज पूछ रहा था कि भाई बताओ तुम ये लोग सब ये सब करते हो, तो उन्होंने कहा हाँ हम तो करते हैं, भगवान का नाम सबको मिले इससे हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं, हमारे गुरु जी ने कहा। तब ये जज ने पूछा ऐसे कि और क्या करते हो तुम लोग बताओ, अब जब आ ही गए हो कटघरे में तो बताओ और क्या क्या करते हो। तो अब ये बोले, ब्रह्मचारी थे, बोले मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, 3 बजे, फिर मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूं, ठंडे पानी से स्नान करता हूं, फिर हमारी मंगल आरती होती है 4:30 बजे, फिर फिर दो घंटा मेडिटेशन करता हूं, जप करता हूं, फिर बाद में हमारी क्लास होती है, फिर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो उसने जब इतना सब सुना तो उसने ये जो आए थे दूसरे कंप्लेंट लेके, उसको बोले ये तो ऑलरेडी पनिश्ड है, इनको क्या पनिशमेंट देंगे। बोले इससे बदतर जीवन और क्या हो सकता है। बोले जाओ 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 तुम। तो सोचिए हम लोग ये जो सिंपल जीवन हुआ ना, सुबह जल्दी उठना, स्नान कर मंगल आरती करना, जप करना, ये सब सादा जीवन है। लेकिन कलयुग के लोगों का दृष्टिकोण क्या है कि जितना जीवन आपका कॉम्प्लेक्स रहे, कि टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं कुछ भी करने के लिए, हां बहुत एडवांस्ड है वो, टाइम ही नहीं है इसके पास, है ना, उसको बहुत एडवांस्ड बोलते, टाइम ही नहीं है। और जिसके पास खाली टाइम आ जाए, निकम्मा, किसी काम का नहीं। तो ये जो सादा जीवन, इसलिए जब अंग्रेज वो जब पहली बार आए भारत में, रॉबर्ट क्लाइव, इसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव इसने कहा, इस अंग्रेज ब्रिटिशर ने कहा कि ये जो गुरुकुल सिस्टम, उसने जब गुरुकुल सिस्टम देखा, बोले मैंने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा, एक गुरु जो कि कोई नौकरी पेशा नहीं कर रहा है और वो 100 शिष्यों को मुफ्त में ज्ञान दे रहा है। तो उसने कहा दिस इज मोस्ट इंप्रेसिव, अ पुअर ब्राह्मणा गिविंग फ्री नॉलेज टू 100 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। बोले मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्शियसली अपना जीवन सादा रखना चाहता था। कौन? वो गुरु, जो भी वो ब्राह्मण गुरुकुल में जो चीज सिखाता था, बिकॉज ही वॉन्टेड सिंपल लाइफ, देयरफॉर ही वुड गिव इट फॉर फ्री। अब देखिए आजकल किसी कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, सबसे पहले डोनेशन, फीस। वो जो शिष्य हैं, जब तक कि पूरा उसको निचोड़ न ले तब तक उसको एंट्री नहीं मिलती कॉलेज और स्कूल में, है ना। तो फिर वो ज्ञान हुआ कि बिजनेस हुआ फिर वो। और फिर इस रॉबर्ट क्लाइव ने देखा, बंगाल गया हो, बंगाल में उसने देखा कि हर एक घर में, उस जमाने की बात, हर एक घर में कम से कम 15 गाय थी, और बंगाली कम गाय ज्यादा थी पूरे बंगाल में। तो उसने ये जो इस प्रकार का सादा जीवन, क्योंकि गाय रखना, गाय की देखभाल करना, पूरा समय उसके अंदर, और मिलता क्या है, बस दूध, गोबर, सिंपल लाइफ। तो उसने, उसका कंक्लूजन ये था कि जब तक हम इनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे तब तक हम इनके ऊपर राज्य नहीं कर सकते, हमें इनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। और जब तक ये गुरुकुल सिस्टम रहेगा और गाय रहेंगी, इनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने इंडोलॉजिस्ट को भेजा गुरुकुल सिस्टम नष्ट करने के लिए, और 1 साल में 1 करोड़ गायों की हत्या की। उस जमाने की खबर थी कि तमिलनाडु के एक छोटे से प्रांत में उन्होंने देखा एक एकड़ भूमि पर 500 किलो चावल उग रहा है, बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल, केवल गाय और उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए। तो ये इनका सब खत्म करो उत्पादन, गाय की वजह से जो जो हो रहा है, गाय को मारो। तो हुआ क्या कि इन्होंने फिर, कई हमारे ऐसे नेता भी थे जो कहते थे कि हां ये अंग्रेजों ने नए मंदिर खड़े करके दिए हमें, इंडस्ट्रीज आर द मॉडर्न टेंपल्स ऑफ इंडिया, और ये मॉडर्न टेंपल क्या, जहां पर केवल ये सिखाया जाता था कि कैसे आप आपका सादा जीवन छोड़कर जीवन को और जटिल और कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। तो ये जो तप, हम ये नहीं समझना चाहिए तपस्या का अर्थ जंगल में जाकर वो जो एक कोई योगी है एकदम मरियल सा, उस प्रकार की तपस्या हमें करनी है। प्रभुपाद की परिभाषा क्या है, तपस्या मीन्स सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इज अ सो कॉल्ड लग्जरी ऑफ कलियुगा। जैसे एक मुझे हाल ही में एक समाचार सुना रहे थे एक भक्त कि एक नवाब, सऊदी अरब का एक नवाब, उसने एक ऐसा आलीशान महल तैयार किया अपने लिए, 350 कमरे, सोचो 350 कमरे, और 350 कमरे, क्योंकि इतने सारे कमरे उसे पता भी नहीं कौन से कमरे कहां पर हैं, लेकिन 350 कमरे हैं तो उसको अब यूज तो करना है ना, तो वो रोज अलग अलग कमरों में सोता है, नहीं तो फायदा क्या 350 कमरों का, धर्मशाला तो खोलने नहीं वाला है वो। तो 350 कमरों में वो अलग अलग कमरों में रोज सोता है, और अलग अलग कमरों में सोने के वजह से उसको नींद नहीं आती, तो नींद की गोली लेनी पड़ती है। देखो इसको कहते कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। तो पहले खड़ा किया 350 कमरों का ये महल, और क्योंकि इतना खड़ा कर दिया तो अभी सोना भी है, एक एक कमरों में यूज करना है, तो नींद नहीं आ रही क्योंकि अलग अलग कमरों में सो रहा है रोज, नींद आए इसके लिए नींद की गोली खाता है, और उसकी वजह से और कितने सारी बीमारियां। बहुत वर्षों पहले वो फिलीपींस की को थी प्राइम मिनिस्टर टाइप, रेड हुआ उसके घर पर, 400 जोड़ी चप्पलें, पेयर्स ऑफ शूज। तो जो वो पूरे नागरिक उस देश के, जब उन्हें पता लगा कि ये हमारे नेता हमको लूट लूट के क्या कर रहे हैं, देखो चप्पलें खरीदे, वही चप्पल पकड़ पकड़ के मारे उसको। तो इसलिए आजकल ये सब जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना दिया है लोगों ने, तो इसके परिणाम ये सब बीमारियां, स्वाइन फ्लू, वही सूरों का जीवन जिएंगे तो स्वाइन फ्लू ही होगा, बर्ड फ्लू, मैड काउ डिजीज, चिकनगुनिया, सब जानवरों, जानवर बेचारे वो आराम से जी रहे हैं, और उनका पूरे प्रकृति का दुरुपयोग करने की वजह से ये मनुष्य पछता रहे हैं। तो इसलिए जो प्रभुपाद ने ये चार नियम दिए, कैसे, देखिए चार नियम और तप और सिंप्लिसिटी का कनेक्शन है। हम लोग जो इस्कॉन में आने से पहले, हाँ थोड़े बहुत कुछ नियम पालन हमसे हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चार नियम पूरा हम पालन कर रहे थे। तो अब चार नियम पालन करने की वजह से हमारा जीवन कितना आसान बन गया, कितने सारे टेंशन दूर हो गए। हाँ ये बीच में कांदा चल रहा था, प्राइसेस, कोई हमको टेंशन नहीं था, सबसे निष्फिक्र थे हरे कृष्णा के भक्त, सब लोग टेंशन में, होटल वाले टेंशन में, घर वाले अभी खाना पकाएंगे कैसे, कितना 100 रुपए किलो कांदा कितना था मालूम भी नहीं है हमारे। क्योंकि कोई वांदा नहीं कांदा नहीं होता। तो चार नियमों के वजह से प्रभुपाद ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया, कितने सारे टेंशन दूर हो गए। और वही उद्देश्य है तपस्या का, सिंप्लिसिटी। तो इन तीनों में से जो हमने सर्वप्रथम लिया तप, तो तपस्या जब होती है जीवन में तो उसका परिणाम है यज्ञ। बिना तप के यज्ञ नहीं हो सकता। तो अब यज्ञ प्रभुपाद ने हमें दिया, ऐसा नहीं कि बस केवल चार नियम पालन कर हम निष्फिकर हो जाएं कि हमारा उद्धार निश्चित है, नहीं। इसके उपरांत, इसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ। तो हमारे आचार्य उन्होंने बताया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एक औषधि है, एनेची औषधि माया नाशोबार लागी, कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है एक औषधि है। तो यदि तप का विपरीत है भोग, तो यज्ञ का विपरीत क्या हुआ, पाप। यज्ञ का विपरीत पाप और तप का विपरीत भोग। तो यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र की तुलना औषधि से की गई है, तो पाप की तुलना किससे की जाएगी, जहर। जैसे अमेरिका, हमारा एक सियाटल का मंदिर है, तो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट बता रहे थे कि वो रोज वॉक पर जाया करते थे और एक जगह पर एक बूढ़ा व्यक्ति, वो रोज इन दोनों का संपर्क होता। तो ये भक्त प्रभुपाद के डिसाइपल, तो ये उसे बोलते हरे कृष्णा, चलते चलते हाथ में इनकी माला होती तो हरे कृष्णा, और ये जोर से चिल्लाता गेट लॉस्ट, ये जोर से चिल्लाता गेट लॉस्ट। लेकिन और बहुत सालों तक ये चला, रोज ये जाके उसको हरे कृष्णा बोलते और वो कहता गेट लॉस्ट। तो कुछ वर्षों पश्चात ये व्यक्ति को इन्होंने मंदिर में देखा, ये मंदिर में आया और मंदिर में बैठ के प्रसाद खा रहा है। तो फिर ये गए उनसे मिले कि क्या हुआ भैया, अचानक हाउ कम यू आर लॉस्ट हियर। तो इन्होंने बताया कि ये रात को इनको बहुत भयानक सपने आया करते थे, बहुत भयानक सपने आए, कुछ ऐसे भयानक भयावह चीजें दिखती थी, अलग अलग प्रकार के कोई जंतु प्राणी दिखते थे इन्हें भयानक। तो इंग्लिश में, क्योंकि अमेरिकन, तो इंग्लिश में गेट लॉस बोलते थे, जो इनको बोलते थे ना ये गेट लॉस्ट, तो गेट लॉस इन सपने में नींद में चिल्लाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो फिर वो गेट लॉस्ट का कनेक्शन इनका हरे कृष्ण के साथ था ना हर समय रोज, तो इन्हें सपने में गेट लॉस्ट के बाद वो हरे कृष्ण याद आता, तो हरे कृष्ण बोलते ही सब छुमंतर हो जाता। तो इनको लगा कि ये संस्कृत में, इनके जो भाषा है संस्कृत में, गेट लॉस्ट मतलब हरे कृष्ण। तो ये बोले कि मैंने वो मेरे नाइटमेयर्स और ये भयानक सपनों को दूर करने के लिए इतने मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, इतना मैंने गोलियां ली, ये किया वो किया, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं हुआ। केवल ये जो आपका औषधि है ना, उसने कहा दिस मेडिसिन ऑफ हरे कृष्णा वक्त। तो जो हमारे आचार्य गा कर गए एनेची औषधि माया, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो यज्ञ है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये औषधि जो है, हमें ये समझना चाहिए कि ये ऐसी औषधि है कि न केवल हमारी एग्जिस्टिंग बीमारी को दूर करती है, बल्कि आने वाली बीमारी से भी हमें बचाती है। ये इस प्रकार की औषधि है। तो इसलिए यज्ञ हमें श्रील प्रभुपाद ने तप के साथ यह हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ दिया। और जब हम तप और यज्ञ का पालन करते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है? दान। यह हमें दूसरों को बांटना है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कर पर उपकार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो और फिर परोपकार, वो है दान। दान का विपरीत कलयुग में क्या है? स्वार्थ। तो अब देखिए, जैसे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में बलि महाराज और वामन देव, इनकी कथा है। तो बलि महाराज के पास जब वामन देव आए एक बौने के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, और वामन देव इन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, तो बलि महाराज ने क्या कहा? अभी अंतर देखिए, एक बहुत बड़े दानवीर बलि महाराज और आजकल की प्रवृत्ति क्या होती है कलयुग में। तो बलि महाराज ने पूछा, बस इतना ही मांग रहे हो? और कलयुग में कोई दान मांगने जाए, इतना मांगते हो तुम? है ना, ये कलयुग की प्रवृत्ति है। आप किसी के पास जाओ कलयुग में, कहो कि हमारे राधा कृष्ण मूर्तियां आ रही हैं और भगवान की अर्च विग्रह की सेवा के लिए आपसे हम कुछ दान मांग रहे हैं। उल्टा वो जो सेवा वो दी जा रही है, वो भगवान का दान है उनके ऊपर कि भगवान सेवा में लगा रहे हैं। तो फिर लोग पूछते, इतना क्या है, इतना हुई? आपके भगवान के लिए इतना क्या खर्चा करते हैं आप? तो इसलिए कहा गया है कि अर्चा विग्रह ना, अर्चा के ऊपर खर्चा करना है, तब जाकर इस भौतिक संसार का जो चर्चा है वो बंद होगा। तो देखिए, बलि महाराज ने पूछा, Why so less? और कलयुग की प्रवृत्ति क्या है? Why so much? तो बलि महाराज ने वामन देव से कहा कि ये मेरे प्रति इंसल्ट है। क्यों? क्यों इंसल्ट है वो बोल रहे हैं? क्योंकि मैं किसका पोता हूं? बलि महाराज किसके पोते थे? प्रहलाद महाराज के। तो वो अपना कनेक्शन बता रहे हैं कि मेरा कनेक्शन पहले आप जान लो कि मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं, और कम से कम वो मेरा खानदान देखते हुए तो आप कुछ मांगो। विपरीत कलयुग में देखिए, कलयुग में कोई कनेक्शन अपना इस्टैब्लिश नहीं करना चाहता। एक हमारे बंबई में एक बार ऐसा ही हुआ कि एक समारोह चल रहा था और समारोह में हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जो जो आ रहे थे। तो हमारे जो डिवोटी बैठे हुए थे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, एक महिला आई तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो इन्होंने पूछा कि आपका पूरा नाम क्या, हस्बैंड का नाम क्या। तो इतना आग बबूली हो गई कि आपको हर समय हमारा कनेक्शन हमारे हस्बैंड से क्यों करना है, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। तो कोई कनेक्शन नहीं चाहिए हमें। इसलिए वेस्ट में हम जो प्रचार करने जाते हैं तो कई प्रश्न हैं जो हमको पहले ही बता दिया गया, बैंड क्वेश्चंस है, कभी पूछने का नहीं कि आपके माता पिता कहां हैं, आपके हस्बैंड वाइफ कहां हैं, कभी नहीं पूछने का। दीज आर ऑल बैंड क्वेश्चंस, क्योंकि किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए देखिए आजकल कलयुग में क्या प्रचलन है, हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि कैसे हम हमारा कनेक्शन हर समय सामने रखें, हमारा कनेक्शन गुरु परंपरा के साथ। जैसे एक हाल ही में मुझे किताब दिखाई गई, तथाकथित आध्यात्मिक किताब है, आध्यात्मिक किताब बोलते हैं इसे, और उस किताब का पब्लिसिटी कैसे किया गया है, उस किताब का पब्लिसिटी किया गया, शुरू में लिखा है नवीन विचारांची पुस्तक, और यह बताया गया है कि आगे लिखा था संप्रदायांच्या पलीकडे। हाँ, ये उसका पब्लिसिटी स्टंट था किताब का, संप्रदायांच्या पलीकडे नवीन विचारांची पुस्तक पा। ये आजकल ये हॉलमार्क है कलयुग का, कि कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बलि महाराज ने तुरंत वामन देव से क्या कहा, पहले मेरा कनेक्शन जानो, आई एम कनेक्टेड टू सच अ ग्रेट महाजन प्रहलाद महाराज, उनके बलबूते पे आप मेरे साथ व्यवहार करो। तो अब हम देखें बलि महाराज का दान, यदि कोई दान किसी ने किया है तो बलि महाराज ने सब कुछ, ऐसा नहीं कि उनके कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने अपने लिए रखी थी कि हाँ अभी कोई दान करता है आजकल तो वो अपना खुद का बंगला थोड़ी दे देता है कि हाँ चलो ये भी आपके नाम, ये सब मेरी गाड़ी भी आपके नाम। इसलिए जो आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा किसी ने दिखाई तो वो बलि महाराज, स्वयं अपने आप को दे दिया। वैसे ही हमने हाल ही में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, इनका आविर्भाव मनाया, इनके एक शिष्य ब्रज बंधु उनका नाम, इन्होंने ये पता किस, ये नौकरी पेशा वाले थे और ये अपनी तनख्वाह लाकर भक्ति सिद्धांत को दे दिया करते थे। अक्सर कोई यदि किसी गुरु को कुछ डोनेशन देता है तो अपनी तनख्वाह में से कुछ निकाल के देता है ना, वो अपनी पूरी तनख्वाह लाकर भक्ति सिद्धांत को देते थे और कहते थे कि इसमें से आपको मुझे कुछ देना हो मेरे जीवन यापन के लिए तो आप दीजिए। और उन्होंने अपना सब कुछ भक्ति सिद्धांत को दे दिया। इसलिए कलकत्ता में गौड़िया मठ में आप यदि जाओ तो वहां पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनकी एक मूर्ति स्थापित की है ब्रजबंधु, जिनके इस प्रकार के निस्वार्थ दान के वजह से वो गौड़िया मठ खड़ा हुआ, सब कुछ अपना न्यौछावर उन्होंने कर दिया। जैसे इसलिए इसे कहते हैं बृहद विचार। आजकल आप किसी से कोई रेसिपी भी पूछो, खाने की रेसिपी भी पूछो, सीक्रेट है, दान वान छोड़ दो, रेसिपी सीक्रेट है। इसे कहते हैं कृपण, कृपण विचार। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में इसका उल्लेख है कि युधिष्ठिर महाराज जब 13 वर्ष का वनवास उन्हें मिला तो युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लगे। पता है क्यों? युधिष्ठिर महाराज का विलाप इसलिए नहीं था कि पूरा राज्य छीन लिया, हड़प लिया इस दुर्योधन ने। युधिष्ठिर महाराज का विलाप यह था कि अब सब कुछ छीन गया है मेरा, मैं ब्राह्मणों को दान कैसे दूंगा? जो मैं रोज इतने ब्राह्मणों को दान दिया करता था, मैं कैसे ब्राह्मणों को अब दान दूंगा? ये उनका विलाप था, ये उनकी चिंता थी। इस प्रकार के दानी थे उन युगों में। तो ये ब्रज बंधु, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, हम लोग यहां गए थे कुछ साल पहले अमृतसर, स्वर्ण मंदिर जो है, तो वहां हमें स्वर्ण मंदिर में बताया गया कि जितने वहां पर उस अमृतसर में, अमृतसर के आसपास जितने सरदार रहते हैं, वो अपना 10% इनकम स्वर्ण मंदिर को देते हैं। और स्वर्ण मंदिर का जो बजट है वो पूरे पंजाब स्टेट से ज्यादा है। ये निस्वार्थ भाव से उनका दान है उसके वजह से। और ऐसा नहीं केवल वो दान देकर फिर हमारा कहीं पे नाम होना चाहिए, नहीं, आकर वो वहां पर सेवा करते हैं, चप्पलें उठाते हैं, जितने सारे यात्री आते हैं दर्शन के लिए उनके चप्पलें उठाते हैं, सेवा करते हैं। बड़े बड़े लंदन से, लंदन में जो पंजाबी रहते हैं वो लोग आते हैं वहां पर और शू स्टॉल में सेवा करते हैं, तो बहुत सराहनीय है। और कलयुग में आजकल आप देखो जो भौतिक जीवन शैली है, एक व्यक्ति हाल ही में मुझे कह रहा था कि आपके ये जो हरे कृष्णा मंदिर है इसमें आप लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं, आपकी भगवान को इतनी क्या जरूरत है क्या ये सबकी? मैंने उनसे पूछा कि देखो, एक राष्ट्रपति कहीं रिबन काटने जाता है, आपको पता है राष्ट्रपति कहीं रिबन काटने जाता है, जो भी जाती है जो भी होगा, एक रिबन काटने के लिए 50 लाख की सिक्योरिटी का खर्चा होता है उसके ऊपर, 50 लाख सिक्योरिटी का खर्चा, और राष्ट्रपति ने एक रिबन काटा है, तो कोई भी काट सकता है रिबन? तो वही मैंने पूछा, रिबन तो कोई भी काट सकता है, 50 लाख क्यों खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर? वो आया था, वो बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति, वो आया था जब, वो जब राष्ट्रपति था, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से 100 कुत्ते आए थे उसके सिक्योरिटी के लिए। तो पूछा, भाई भारतीय कुत्ते कम है क्या? बहुत है इधर, गली गली में मिलेंगे आपको फ्री में, 100 कुत्ते। और वो 100 कुत्ते उसकी सिक्योरिटी के लिए 7-स्टार होटल में उनको कमरे दिए गए थे। हम ये बोल रहे थे कि कितने, 100 की 101 कमरे कितने दिए थे, पता नहीं कितने थे। तो अब भारत में आजकल ये लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स है कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के ऊपर एक सर्वे कराकर निकाला गया है कि एक वर्ष में ये केवल ये चेहरे का मेकअप करने के लिए 1500 करोड़ रुपया खर्चा होता है, ओनली फॉर फेस मेकअप 1500 करोड़। क्या है ये? जैसे एक बार एक महिला, वो थोड़ी वृद्ध अवस्था को टच कर रही थी, तो यमराज जी आए, समय हो रहा था उसका, तो यमराज जी से प्रार्थना किया कि मुझे 10 साल और, बस 10 साल, 10, उसके बाद में मैं खुद से वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो 10 साल आ। तो इतनी मिन्नतें उसने की यमराज, ठीक है अच्छा 10 साल। एक हफ्ते बाद एक्सीडेंट में मृत्यु उसकी, बहुत गुस्सा हुई, यमराज के पास गई, अरे आपने तो एक्सटेंशन दिया था मुझे 10 साल का, एक हफ्ते में किसको, आपको कहां दिया था, एक्सीडेंट करवा दिया, मैं तो थी वो। अच्छा आप थे क्या, वो चेहरा ध्यान में नहीं आया, ब्यूटी पार्लर से बाहर आई थी ना वो। तो क्योंकि जैसे ही 10 साल एक्सटेंशन मिला, तुरंत फर्स्ट वो ब्यूटी पार्लर में गई। तो यमराज जी बोले कि इतना पीओपी चढ़ाया था, समझ में नहीं आया। तो 1500 करोड़ सोचिए पीओपी चढ़ाने का, ये केवल फेस मेकअप है, और बाकी फिर और कितने सारे अलग अलग प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, क्या है ये सब। तो कलयुग में देखिए दान की परिभाषा भी कितनी विकृत हो चुकी है। अभी हाल ही में एक और व्यक्ति मुझे, मैं जब जयपुर में था तो वहां पर एक व्यक्ति मुझसे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि क्या क्या उन्होंने दान के कार्य किए, आजकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक ना वृद्धाश्रम खोला है, ओल्ड एज होम, तो क्या कहना आपका इसके विषय में। तो आपको यदि कोई कहे कि ओल्ड एज होम मैंने खोला है, तो आप क्या कहोगे, कितना सज्जन विचारों का आदमी है ना, ओल्ड एज होम खोला, ना दानवीर है। मैंने कहा आप क्या बताना चाहते हैं ओल्ड एज होम खोलकर। पहले ही जो बूढ़े माता पिता है उनको कोई देख नहीं रहा है घर में, आप ओल्ड एज होम खोलोगे तो उसको आप और बढ़ा दे रहे हो कि निकालो बाहर इनको, उधर फेंको। यू आर फैसिलिटेटिंग ब्रेकिंग ऑफ फैमिलीज बाय क्रिएटिंग ओल्ड एज होम। ये आपका दान नहीं है, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू सोसाइटी। तो वो एकदम बहुत चक्कर रह गया, ये तो पहली बार किसी ने मेरे को बोला है। तो फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल से समझाया कि मान लो एक ये है वैश्याघर, और वैश्याघर में कोई फ्री एड्स टेस्ट का कोई शिविर खोला, फ्री एड्स टेस्ट, तो मतलब वहां की कोई भी वैश्याएं उनको एड्स नहीं है, तो कस्टमर तो बढ़ेंगे ना उधर, कम से कम वो एड्स के डर से कोई वहां पर ग्राहक नहीं जाएंगे। इसलिए वेस्ट में ऐसे ही हो रहा है कि वो जाके मर रहे हैं, इससे अच्छा वो जो जितने सारे वो वैश्याएं हैं उनको एड्स से मुक्त करो। तो आप ओल्ड एज होम खोल रहे हो, तो ओल्ड एज होम देखकर, तो पहले अगर ओल्ड एज होम नहीं होता कई जगह पर, अगर ओल्ड एज होम नहीं है तो फिर कोई चारा नहीं था, तो माता पिता को रखते कम से कम अपने घर में। तुम ओल्ड एज होम खोल के खड़ा करोगे वहां पर और एडवर्टाइज करोगे तो हाँ खोला है, तो फिर जाओ रहो उधर। ये कलयुग की चैरिटी है, मतलब ये उस प्रकार की चैरिटी है एम्बुलेंस डोनेटेड बाय चार मीनार। सोचो एम्बुलेंस डोनेटेड बाय चार मीनार कंपनी। अरे तुम कंपनी खोल रखा है क्योंकि लोग उस एम्बुलेंस में तुम्हारे वजह से तो जा रहे हैं, और तुम एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो। इसलिए ये क्रिकेट मैच फॉर एड्स, यू नो रिहैबिलिटेशन सेंटर, रॉक कंसर्ट फॉर एड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो रॉक कंसर्ट हो रहा है, अधनंगी औरतें नाच रही वहां पे, और एड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए वो पैसा जाएगा। एक बड़े मंत्री ने 40 लाख रुपया किसके लिए, कॉलेज के लिए 40 लाख रुपए मेरे तरफ से डोनेशन, लेकिन 5 सीट मेरी होनी चाहिए। तो कमाया कितना उसने, 40 करोड़, वो 5 सीट जो ले ली। तो वो कोई डोनेशन नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था उसका, जिंदगी भर कमा रहा है वो 5 सीट जो उसने ली है उस कॉलेज में। तो ये कलयुग की स्थिति है। रिबन काटने के लिए 50 लाख, पीओपी के लिए 1500 करोड़। तो महाभारत में बहुत सुंदर बताया गया है, महाभारत में बताया गया है कि कोई यदि दान करना चाहता है तो उसका जीवन इंद्रिय निग्रह का होना चाहिए। ओनली अ सेंस कंट्रोल्ड पर्सन कैन बिकम अ चैरिटेबल पर्सन। ये कॉम्बिनेशन है उसका। अ पर्सन हु इज अ सेंस ग्रेटिफायर कैन नेवर बिकम अ चैरिटेबल पर्सन, ही कैन ओनली बिकम एन एक्सप्लॉइटर। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, क्योंकि यदि कोई अपने जीवन में उस इंद्रिय निग्रह का पालन नहीं कर रहा तो उसका जो तथाकथित वो दान है वो केवल क्या बोलते हैं, बोल बचन टाइप। जैसे हमारे एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में ये घटना हुई थी, तो वीटी पर हमने स्टॉल लगाया था भगवद गीता बुक्स का, और एक व्यक्ति होते हैं ना कई ऐसे भाषण झाड़ने वाले आते हैं, देख रहा है वो, और उसने बोला आप लोगों को शर्म नहीं आती? हमने पूछा क्यों भाई, अरे इतना पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता, गटर के बगल में आपने स्टॉल लगाया, इतने पावन ग्रंथ को आप गटर के बगल में स्टॉल लगाए, वो शर्म नहीं आती? क्योंकि हमें वही एक जगह मिली थी, वहां पर जगह मिलना इतना मुश्किल है, वही एक जगह मिली थी। तो फिर हमारे वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्योंकि ये इनको लेनी थी भगवत गीता, तो इनको कहा, पूछे कितने ये भगवत गीता, बाद में पूछे वो, तो उन्होंने कहा आपके लिए ये 500 रुपए की है। तो आपने तो इधर 70 रुपया लिख रखा। नहीं 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 नहीं, आप इसकी कीमत जानते हैं ना, मतलब आप ही ने तो बोला कि इतना पवित्र ग्रंथ है और इतना पावन ग्रंथ है, तो आपके लिए उस प्रकार की वैल्यू लगाई, दो 500 रुपया। नहीं नहीं मुझे सत्य नहीं, कहां गया आपका पावन भाषण अभी। तो ये होते हैं बोल बचन, खाली बोलने वाले। तो इसलिए जो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यज्ञ दान और तप हमारे जीवन, मनुष्य जीवन की प्रगति इन तीन क्रियाओं में छुपी हुई है। इसलिए हम यदि वैदिक जीवन शैली का पालन करना चाहते हैं तो भगवान के अनुसार यज्ञ दान और तप, और सही यज्ञ, सही दान और सही तप, जो आज हमने जिसकी चर्चा की, जब हम सही मायने में सही तप और सही यज्ञ और दान में लगेंगे, तब जाकर भगवान कहते हैं कि अवश्य ही, जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के जो विभाग हैं, हमारी श्रद्धा उन परम सत्य भगवान में लगेगी और उस श्रद्धा के कारण हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।